श्रीमद्भागवतम छठा स्कंध अध्याय संख्या 17। अध्याय का नाम है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। श्लोक संख्या 32। नाहम विरिंचो न कुमार नारदो न ब्रह्म पुत्रा मुनया सुरेशा विदामयसे तम शंक शंका पृथगीश मनिना नाहं विरिंचो न कुमार नारदो न ब्रह्म पुत्रा मुनया सुरेशा यस्यैकं शंका शंका न तत्स्वरूपं पृथगीशमाना नाहं विरिंचो न कुमार नारदो ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशा विदामयस्य तम शंका शंका तत्स्वरूपं पृथगीश मानिना। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ना नहीं अहम मैं भगवान शिव विरिंच भगवान ब्रह्मा ना नहीं कुमार अश्वनी कुमार नारदौ देवऋषि नारद ना नहीं ब्रह्मपुत्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र मुनया परम साधु पुरुष सुर एशा समस्त देवता विदामा जानते हैं यस्य जिसका इहितम गतिविधि अशंक अशंक अंशों के भी अंश ना नहीं तब उसका स्वरूपम वास्तविक व्यक्तित्व पृथक भिन्न ईश राजा मानिना मान बैठे हैं। अनुवाद ना तो मैं भगवान शिव ना ब्रह्मा ना तो मैं ना ब्रह्मा या अश्विनी कुमार ना ही नारद या ब्रह्मा के अन्य साधु पुत्र और ना देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को जान सकते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने को स्वतंत्र तथा पृथक शासक नियंता मान बैठते हैं जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। ब्रह्म समय का 533 का कहना है, अद्वैतम अच्युत्यम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की उपासना करता हूं जो आदि पुरुष हैं, परम अनादि अनंत रूपों में विस्तार करते हुए भी वही आदि पुरातन तथा नव यौवन से पूर्ण पुरुष हैं। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ ईश्वर को वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते, वे तो शुद्ध भक्तों के ही समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। भगवान शिव अपने को एक ऐसा अभक्त बताते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवान अनंत होने के कारण असंख्य रूपों वाले हैं, तो भला सामान्य पुरुष उन्हें कैसे समझ सकता है। भगवान शिव सामान्य पुरुषों से ऊपर हैं, किंतु वे भी श्री भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान शिव ना तो सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, ना भगवान विष्णु की श्रेणी में, वे तो इन दोनों के मध्य में हैं। हरे कृष्ण। आज सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिन है, आज बहुत महान आचार्य जयदेव गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। जयदेव गोस्वामी तिरुभावती महामहोत्सव के, तो जयदेव गोस्वामी जी के विषय भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा श्लोक से ही संबंधित होगी। और जयदेव गोस्वामी के विषय में काफी ढूंढने के बाद भी बहुत ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, और जो कुछ हमें प्राप्त हुआ जो वर्तमान आचार्य से सुना उसको रिपीट करने का प्रयास करेंगे, और इस श्लोक के ऊपर भी जो चर्चा करेंगे उसी में हम जयदेव गोस्वामी जी को गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रसंग चल रहा है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप, और आप में से कुछ भक्त जो प्रतिदिन कक्षा में आ रहे हैं, नियमित रूप से आ रहे हैं, वो जानते हैं कि राजा चित्रकेतु को पार्वती माता ने शाप इसलिए दिया कि राजा चित्रकेतु सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूम रहे थे अपने विमान में, वो विद्याधर लोक के पति हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं कुछ लोकों में, और उन्होंने देखा एक बहुत ही अद्भुत दृश्य, भगवान शिव अपनी भार्या पार्वती के साथ बैठे हैं, सिद्ध पुरुष और चार अनोकृपण ऋषियों के बीच में भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन उसमें अद्भुत बात क्या है कि अपनी भार्या को उन्होंने गोद में बिठा रखा है और सब ऋषि मुनियों के सामने उनको आलिंगन कर रहे हैं और साथ में भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखकर राजा चित्रकेतु ने कुछ व्यंग कसा, क्योंकि उनको ये डर था कि भगवान शिव महाजन है, उनके इस आचरण को देखकर सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा और वो भी इस तरह से गलत आचरण कर सकता है। तो थोड़ा से हंसे और उन्होंने जोर से हंस के एक व्यंग कसा भगवान के ऊपर, उन्होंने अपना आश्चर्य प्रकट किया, यानी कि उनको अपमानित करना चाहते थे, और भगवान शिव ने बुरा नहीं माने, वो भी बात में मुस्कुराए और बाकी जो ऋषिगण में थे वो भी चुपचाप रहे। लेकिन माता पार्वती ने इसको अपराध लिया और माता पार्वती बहुत क्रुद्ध हो गई और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम हमें, अगर हम कुछ गलत कार्य भी कर रहे हैं तो हमारे इस गलत कार्य को ठीक करने के लिए सारे ऋषिगण हैं, ब्रह्मा जी हैं और सारे उच्च अधिकारी हैं जो हमें ठीक कर सकते हैं, तो तुम्हारे अंदर इतना अहंकार कैसे आ गया। तो उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि तुम इस योग्य हो कि तुम असुर योनि में चले जाओ। जब चित्रकेतु को श्राप मिला तो उन्होंने क्या किया, वो तुरंत विमान से नीचे उतरे, उन्होंने हाथ जोड़कर माता पार्वती के श्राप को स्वीकार किया और बोला कि हे माता, आपने जो मुझे श्राप दिया वो मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है। श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री शक्ति। तो राजा चित्रकेतु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, राजा चित्रकेतु ने मुस्कुराते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। देखिए कहां वो विद्याधर लोक के पति थे और कहां उनको बोल दिया आप असुर योनि में चले जाओ। तो उन्होंने तुरंत उसको हंसते हुए स्वीकार किया और बोला ये तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, मनुष्य के जीवन में सुख दुख देवताओं द्वारा प्रदित होते हैं कर्मों के नियमों के अनुसार, तो इसमें अगर हम किसी को दोषी ठहराएं तो इसमें किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है, मैं स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं। और यह कहकर उन्होंने बोला कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उस गलती को क्षमा करें, आप क्रुद्ध ना हो मुझसे। तो उन्होंने माता पार्वती से यह नहीं कहा कि अपना शाप वापिस ले लीजिए, ना ही उन्होंने माता पार्वती को दोबारा से शाप दिया, चुपचाप उस शाप को स्वीकार कर लिया और चले गए। तो माता पार्वती देखकर बिल्कुल हैरान हो गई, ये कैसा चरित्र है, ये कैसा आचरण है, मैंने क्रोध में आके ऐसा श्राप दिया और ये व्यक्ति बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। माता पार्वती बहुत आश्चर्य हो गई। उसके बाद शिव जी मुस्कुराते हुए सभी ऋषियों के बीच में शिव जी ने माता पार्वती को संबोधित किया। तो बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन है
तो शिव जी बताते हैं, प्रभुपाद उसने वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में आचार्यों की टीका को करते हुए कि हे पार्वती, तुम अत्यंत सुंदर शरीर वाली हो और तुम यशस्वी भी हो, किंतु तुम श्री भगवान के दासानुदास भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकते। कितनी सुंदर बात है। श्लोक में है, महात्म्यम भृत्य भृत्या नाम निष्प्रियाणम महात्मा नाम। जो दासों के दास होते हैं उनकी जो सुंदरता है और उनके यश के सामने तुम्हारी सुंदरता कुछ भी नहीं है। भक्तों का सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? वैष्णव सदाचार का पालन करना उनका आभूषण है और उस वैष्णव सदाचार में ही विनम्रता आती है। तो भगवान शिव चित्रकेतु को और गुणगान कर रहे हैं कि क्या विनम्रता है, कितने प्रेम से उन्होंने उस शाप को स्वीकार कर लिया और आराम से चले गए। उन्होंने कोई क्रोध में दिखाया, हंसते हंसते शाप को स्वीकार कर लिया। तो माता पार्वती बड़े चकित हैं। तो शिव जी अब माता पार्वती को हंसते हुए बोल रहे हैं, है ना, उनको समझा रहे हैं, देखो तुम अपने को बहुत सुंदर और यशस्वी मान रही हो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा यश जो दासों के दास होते हैं भगवान के, उनके सामने कुछ भी नहीं है। उन्हें बोला, देखो तुमने इस राजा को शाप दिया, किंतु ना तो वह भयभीत हुआ ना ही दुखी, उल्टे उसने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें माता कहकर संबोधित किया और अपने को दोषी मानकर तुम्हारे शाप को अंगीकार किया। यह भक्त की श्रेष्ठता है। तो इस ढंग से प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक अगर हम हर परिस्थिति में रहते हैं तो हम कैसे भगवान को आकर्षित कर पाते हैं, भगवान को कैसे हम प्रसन्न कर पाते हैं। तो इस ढंग से भगवान शिव ने चित्रकेतु महाराज का गुणगान किया। और फिर भगवान शिव बता रहे हैं कि भगवान के भक्त कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे नरक में रहे, हर परिस्थिति में वो आनंद में ही रहते हैं, क्योंकि हर जगह उनका एक ही कार्य है कि भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा भक्ति किसी भी भौतिक परिस्थितियों में रुक नहीं सकती, किसी भी तरह की भौतिक परिस्थिति भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। चरू गोस्वामी बताते हैं कि अगर किसी ने भक्ति करने के लिए दृढ़ विश्वास कर लिया है तो संसार की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होगा। कमी हमारे अंदर दृढ़ता की होती है। तो चित्रकेतु महाराज पूरे दृढ़ थे, ठीक है आप मुझे असुर बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो भगवान की सेवा करनी है। हर जगह क्या क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर हमें शिक्षाएं मिलती है। ये केवल कथा नहीं है कि हम चुपचाप कथा सुने और चले जाए। इसमें देखिए मनन कीजिए, कहां वो विद्याधर लोक के पति और कहां उनकी कोई ऐसी गलती भी नहीं थी और उनको असुर बना दिया गया, फिर भी वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए और धन्यवाद कहकर उस शाप को स्वीकार कर लिया और आगे चले गए चुपचाप। तो भगवान शिव भी उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने माता पार्वती बोला कि तुम्हारी सुंदरता और यश के सामने कुछ भी नहीं है। और माता पार्वती भी बहुत संकोच में आ गई कि कैसा मैंने शाप दे दिया। तो भगवान के भक्तों की महिमा देखी है। और प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं कि जिसने ये दृढ़ता कर ली है कि जीवन की हर परिस्थिति में मुझे भगवान के नामों का जप करना है, कीर्तन करना है, तो संसार की कोई भी परिस्थिति उसके जीवन में बाधा नहीं डाल सकती। हम व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक रूप से देखते हैं, रशिया में जब 1986 और 88 में वहां पे मूवमेंट चल रहा था इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट, तो वहां की सरकार भक्तों को जेल में डाला और कितने ज्यादा उन पर टॉर्चर किए। पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे सॉल्टेड ब्रेड तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप में से कितने भक्तों ने पुस्तक पढ़ी है सॉल्टेड ब्रेड? संवेदन उसको पढ़िए, लेकर पढ़िए और आपको मालूम चलेगा कितना संघर्ष भक्तों ने किया, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। और यहाँ पे पिछले दिल्ली में तापमान गिर गया था 2-3 डिग्री पे, कितनी ठंड लग रही थी। आपने की रशिया में टेम्परेचर -20, -30, -40 डिग्री में, उनको जेल में उनको नंगा करके उनको मारा जा रहा है, इतनी ठंड में पाइपों से पीटा जा रहा है, उनके नाखून उखाड़े जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में भी कौन सोचेगा मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है? ऐसे में भी जो उनको सूखी ब्रेड मिलती थी, इस पुस्तक का नाम सॉल्टेड ब्रेड इसलिए रखा गया, जो सूखी ब्रेड मिलती थी उसको पानी में भिगोकर उसकी माला बना के भक्त लोग क्या करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे विषम परिस्थिति भी कोई आ सकती है ना। प्रतिदिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते थे, उनको 90% ये होता था कि हम वापस नहीं आएंगे, 6 भक्त निकले तो 2 वापस आएंगे, 4 पुलिस पकड़ के जेल में डाल देंगे, पक्का होता था। फिर भी जाते थे और फिर पुलिस पकड़ के मारती थी उनको, फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। तो ये देखिए किसी भी तरह की भौतिक परिस्थिति नारायण परिस्थित्व न को तश्चन्न भव्यति, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते, कहीं में डालो, स्वर्ग में डालो, नर्क में डालो, उनका एक ही कार्य है क्या करना, भगवान के नाम का गुणगान करना। तो ये गुणगान हो रहा है और इसको हम सीख सकते हैं, कितनी दृढ़ता हम भक्ति में ला सकते हैं चित्रकेतु महाराज की तरह। तो भगवान बता रहे हैं, शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि ये जो भक्तों का अद्भुत चरित्र है वो इसलिए है क्योंकि उन पर भगवान नारायण की कृपा है। और भगवान नारायण अपने आप में बहुत अद्भुत है। कैसे अद्भुत है बता रहे हैं आज के श्लोक में, ना हम ना तो मैं विरंचो, ना ब्रह्मा जी, ना कुमार, ना अश्विनी कुमार, नारदो, ना ही नारद, ना ही ब्रह्मा के अन्य पुत्र, ना ही देवतागण, ना ही मुनिगण विदामा जानते हैं उनकी क्रियाओं को, जो कि हमकी अंश के अंश हैं। क्यों नहीं जानते, ना तत् स्वरूपम, हम उनके स्वरूप को नहीं जान पाते, उनकी क्रियाओं लीलाओं को नहीं समझ पाते, क्योंकि पृथक ईश मानिना, हम अपने आप को पृथक भगवान से पृथक होकर ईश मानिना नियंता मानते हैं, क्योंकि हम हालांकि उनके अंश हैं लेकिन अपने आप को हम पृथक मान लेते हैं, सेपरेट कंट्रोलर मान लेते हैं, नियंता मान लेते हैं, इसलिए हम भगवान की लीलाओं को और भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते। ये कौन कह रहे हैं, शिव जी। वैष्णव नाम यथा शंभु, प्रभुपाद तात्पर्य लिखेंगे शिव जी अपने आप को अभक्तों की कैटेगरी में डाल रहे हैं, कितनी विनम्रता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने क्या किया था, पूरे का पूरा जो जहर का समुद्र था पी लिया था और अपने गले में धारण कर लिया और ये उनके गले का आभूषण बना। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान शिव ने उसको जहर के जो सागर को पूरा पिया नहीं, क्यों नहीं पिया, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण का निवास है। तो बोले कैसे फिकी, जब हृदय में भगवान बैठे हैं, और थूका नहीं क्योंकि जीवा पे भगवान का नाम है। तो क्या किया, उसको यहीं पे रोक के रख लिया। ऐसे महान वैष्णव भी क्या कह रहे हैं कि मैं भी नहीं समझ पाता, मैं भी भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाता, मैं भी उनकी क्रियाओं को उनके स्वरूप को नहीं जान पाता, क्योंकि मुझे भी अभिमान आ जाता कि मैं एक सेपरेट कंट्रोलर हूं, मेरे पास कोई शक्ति है, मेरे भी यही हालत है। विरंचय ब्रह्मा जी की भी यही हालत है। हम जानते हैं भागवतम दशम स्कंध में ब्रह्म मोहन लीला, अगासुर का वध करके जब सारे ग्वाल बाल भगवान का गुणगान कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को लगा कि जिस अगासुर से, जिनके पास अमृत है, सारे देवतागण डर रहे हैं, ये छोटे से बालक ने कैसे मार दिया, संभव नहीं है, देख के आता हूं ये वास्तव में भगवान है कोई और है, और साधारण बालकों की तरह घूम रहे। भगवान होते कुछ पर्सनैलिटी होती, चार आठ बुझाएं होती हैं, कोई हेलमेट डाला होगा, कुछ आसपास स्तुतियां हो रही होंगी। अम्मा जी ऐसा सोच रहे थे, गांव का एक ग्वाला सा ऐसे घूम रहे और सब देखा, सब बैठे यमुना के किनारे में और सारे ग्वाला उनको बुद्धू बना रहे हैं, बोले खाओगे खाओगे, फूल थे हाथ में, बोले कुछ खाओगे, देखो तुम्हारे लिए खाना हम क्या लेके आए हैं, ये तो कुछ फूल थे। तो भगवान को मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं, उसके मुंह में ऐसे बांध के वापस निकाल रहे। तो बोले ये भगवान है, ये कैसे भगवान है, ये हो ही नहीं सकते भगवान, ये कैसे हो सकते हैं, चलो मैं टेस्ट करता हूं। तो उन्होंने क्या किया, सारे बच्छनों को और सारे ग्वालवानों को गायब कर दिया। ब्रह्मा जी अपनी शक्तियों पर विश्वास था, वापस जाकर क्या देखते हैं, वैसे के वैसे ही है। फिर वहां के देखते हैं वो गुफा में भी पड़े हैं और यहां भी पड़े हैं, तो पूर्ण रूप से भ्रमित हो गए। और फिर भगवान ने क्या दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, सारे के सारे जो ग्वालवाल थे और सारे के सारे जो बछड़े थे, सबके समय उनको क्या दिखे, चतुर्भुज भगवान का रूप। और ब्रह्मा जी स्वयं देख रहे हैं कि वो स्वयं भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बिल्कुल बेविल्डर हो गए, कंफ्यूज हो गए, हो क्या रहे। फिर उन्होंने खूब प्रार्थनाएं की भगवान की, भगवान ने बिल्कुल ऐसे कहा चलो जाओ बस बहुत हो गया, भगवान ने उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक प्रार्थना करी ब्रह्मा जी वापिस आए को बहुत अंदर से जिसे कहते हैं पश्चाताप हो रहा था कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, भगवान की लीलाओं में बाधा डाला। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो कहां गए, नवद्वीप में गए, कौन से द्वीप में, अंतरद्वीप में, और वहां जाकर उन्होंने खूब तपस्या की और किनका स्मरण किया, गौरांग महाप्रभु का। तो खूब तपस्या करके भगवान के नाम का उच्चारण करते रहे और तब क्या हुआ, भगवान गौरांग महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को यही पश्चाताप हो रहा था कि मैं अपने आप को सृष्टि का कर्ता समझता था और इसलिए मैं भगवान की लीलाओं का दर्शन भी नहीं कर पाया, वृंदावन भी गया लेकिन भगवान के सुंदर रसमय लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे अंदर ये अहंकार का भाव था कि मैं सृष्टि का कर्ता हूं। इसी ढंग से हम लोग देखते हैं, हम मंदिर में आ भी सकते हैं और भगवान के सामने खड़े भी हो सकते हैं लेकिन भगवान हमें कुछ भी अपना प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जब तक अहंकार की भावना होगी, पृथगीश मानिना, अपने आप को हम सेपरेट कंट्रोलर जब तक समझेंगे, हम लोग ब्रह्मा जी और शिव जी की तरह तो नहीं है कि हमें सृष्टि के संहार की शक्ति है या सृष्टि की रचना की शक्ति है, लेकिन थोड़ी बहुत शक्तियां हमारे को दी होती हैं ना, कुछ डिपार्टमेंट मिला होता है, कोई फैक्ट्री के कंट्रोलर होते हैं, कोई प्रोपराइटर होते हैं शॉप के, कहीं ना कहीं हमारे कुछ नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। और अगर हम उसी अहंकार के भाव में रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ये तो भगवान के स्वरूप और भगवान की लीला को तो समझिए, आध्यात्मिक साक्षात्कार में कुछ भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं जान पाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है, आत्म तत्व इतना गहरा है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 29 श्लोक में बताते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्या शृणोति श्रुत्वा पयेनम वेदना चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसे विषय से सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। यहां प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अगर स्वयं भगवान भी किसी को समझाना चाहे आत्मा के विषय में, वो भी नहीं समझ पाएगा जब तक हमें अहंकार की भावना रखेंगे। ये जानना भी मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये भी बहुत बड़े रहस्य की बात है। कहां समझ पाए अभी तक हमें, इतनी बारी सुन चुके हैं, दूसरों को समझा चुके हैं, लेकिन खुद समझ नहीं पाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। क्या कहना आप लोगों का, बहुत मुश्किल है। और फिर आत्मा के साथ मानो चले, किसी ढंग से मानो चले आत्मा है, बोले एक और आत्मा है, वो कहलाती है परमात्मा। वो साथ में बैठा होता है, अरे वाह उसके बारे में, वो भी परमात्मा है, उसके ऊपर भगवान है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, फिर भगवान के वृंदावन की लीलाएं, कितनी गहराई आप देखिए, कितनी गहराई है, कोई नहीं जान पाता, असंभव है। और अगर खासकर हमारे अंदर ईश माने ना, अपने आप को नियंता मानते हैं, तो संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो भगवान अपने को कब प्रकट करते हैं किसी भक्त के सामने, ये कथा उपनिषद में बताया गया है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। कैसे कर सकते हैं भगवान को अपने प्रति आकर्षित, कि चलो बढ़िया बढ़िया किताबों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, बहुत ही निपुण एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन दे, अच्छे अच्छे भले, नहीं ना हम प्रवचने न लभ्यो, बड़े बड़े प्रवचन देने से भी कोई मुझे इंप्रेस नहीं कर सकता। सोचे बड़े प्रवचन दे के कथाकार बन के हम भगवान को आकर्षित करने के, नहीं ना मेधया, अपनी बुद्धि से, सारे आजकल कंप्यूटर में तरह तरह की साइट्स घूमो और फिर फटाफट कोई बढ़िया सा प्रोग्राम बना के अपनी बुद्धि लगाओ पूरा, सारे वेदों का निचोड़ निकाल के निकाले अपनी बुद्धि से, नहीं ना बहुना श्रुते ना धार, सोच लिया जी खूब सुनूंगा, जगह जगह जाके कुंभ मेले में 15 किलोमीटर का मेला है, अलग अलग अखाड़े हैं, सबको सुनूंगा, बहुना श्रुते न, सबको सुनता रहूंगा, देखता हूं कैसे नहीं मिलेंगे भगवान, नहीं। या मे वस्व वृणते तेन लभ्या तस्येष आत्मा विरुणते तनुम स्वाम, मैं उसी के सामने प्रकट होता हूं जिसको मैं चुनता हूं। भगवान चुनते हैं कि किसके सामने मैंने अपना रूप प्रकट करना है। आप करते रहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहे, हम जो मर्जी शास्त्रों को पढ़ लें, जितना मर्जी सुन लें, जितना मर्जी बोल लें, हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हम भगवान को समझ पाएंगे भगवान की कृपा के माध्यम से ही, जिसको भगवान चुनेंगे उसके सामने भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। बस ये है कि भगवान की इच्छा है, तो कैसे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, ये हमें सोचना है। हमें भी भगवान चुन ले ताकि हम भगवान को जान पाए, ये हमारे अंदर लौल्य होना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि ये एक तो होता है कि नास्तिक लोग होते हैं, वो चैलेंज करते हैं, दिखाओ हमें भगवान, है ना, और एक भक्त होते हैं जिनके अंदर खूब लौल्य होते हैं, हाँ मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के बारे में जानना है, तो इस लौल्य को इकट्ठा करना है, यही एकमात्र मूल्य है। गोस्वामी जी बताते हैं कि कैसे मैं भगवान के दर्शन कर सकूं, ये हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हमारे अंदर उत्कंठा होगी तभी उतना ही मात्र में भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि व्हाइट डक्स थे ना, सफेद तरह के पथ के, और प्रभुपाद के हाथ में प्रसाद था, ड्राई ब्रेड थी, तो प्रभुपाद देख रहे थे, तो सारे शिष्य भी देख रहे थे कि प्रभुपाद किसको डालेंगे, बहुत झूम था, तो प्रभुपाद ने एक मतक के आगे डाला, तो प्रभुपाद बोला ही इज क्वैकिंग द मोस्ट, ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्वैक 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 कर रहा है, ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको दिए। इसी ढंग से हम लोग जो साधना कर रहे हैं, हम लोग इतने तपस्या कर रहे हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, सोलह माला का जप करते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए इसके बल पर हम भगवान को देख लेंगे। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कलयुग में किसी भी साधना के माध्यम से हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को जानने का केवल एकमात्र माध्यम है भगवान की कृपा। ये सारे के सारे जो साधन क्रिया हम कर रहे हैं भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे वो बतख, जो बतख जितना ज्यादा शोर मचाएगी वो भगवान को आकर्षित कर देगी, इसलिए जो भक्त जितने हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो जितने भक्त हृदय से रोकर भगवान को पुकारेगा भगवान उसको सुनेंगे, और जो सो सो के पुकारेगा भगवान हो जाएंगे, कोई बात नहीं। सभी लोग हम जप कर रहे हैं, सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं, सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कितनी उत्कंठा से, कितने उत्साह से जो कर रहे हैं उससे हम भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे, उसके सामने भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। लेकिन अगर हम प्रतगीश माने ना, अपने आप को अहंकार की भावना में रखेंगे कि हम भी कुछ हैं, तो हम रो ही नहीं पाएंगे, हम भीख ही नहीं मांग पाएंगे, दिखावटी भीख से तो काम चलेगा नहीं, है ना, हृदय से भीख मांगनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर द मदर, जेन्युइनली क्राई करके पुकारना पड़ेगा, तब भगवान हमारे से आकर्षित होंगे, तब हम उनको जान पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ना तत् स्वरूपण पृथगीश माने ना, कोई भी नहीं समझ पाएगा भगवान को, बड़े बड़े देवतागण नहीं समझ पाते, इंद्र जी भी मोहित हो गए, इंद्र भी गोवर्धन इन्होंने बोलते हैं कि ये चपल बालक ये क्या करेगा, वो भी एक साधारण बालक समझ गए, उन्होंने ब्रजवासियों के प्रति इतना बड़ा अपराध किया। तो जब तक हम इस भावना से मुक्त नहीं होंगे, स्वतंत्रता की भावना से अपने को इंडिपेंडेंट समझते हैं, तो हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे को मनुष्य जीवन मिला है भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए, उनसे संबंध जोड़ने के लिए, और श्री कृष्ण के साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं प्रमाणिक गुरु परंपरा की शरण लेकर। तो जब तक कोई भक्त प्रमाणिक गुरु परंपरा की सही ढंग से शरण नहीं लेगा, वो भगवान के विषय में नहीं जान सकता। हम जाते हैं जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो कुसुम सरोवर एक नामक स्थान आता है, कुसुम सरोवर के साथ एक जगह है नारद वन, देखा किसी नारद वन एक स्थान है, तो एक ऐसा स्थान है कि जहां पर नारद जी तपस्या करते हैं। तो एक बार नारद जी के मन में इच्छा आई कि मैं भगवान राधा कृष्ण की गोवितम लीलाओं को देख पाऊं, तो क्या किया, उन्होंने शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने उनको एक मंत्र दिया, तो उन्होंने खूब तपस्या कर उस मंत्र का जप किया। तो जब उनके सामने फिर उनकी इतनी ज्यादा उत्कंठा को देखा, तो उनके सामने वृंदा देवी प्रकट हुई। तो वृंदा देवी ने बोला कि अगर तुम राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करना चाहते हो तो इस पुरुष रूप में तो जा नहीं सकते, तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। तो उनको कहां ले गई फिर वो, कुसुम सरोवर में। कुसुम सरोवर में नारद जी ने डुबकी लगाई और बाहर निकले तो क्या बने हुए थे, गोपी बने हुए थे। फिर विंध्या देवी उनको ले गई कहां पे, राधाकुंड, और वहां पर उन्होंने भगवान की अष्टकाली लीलाओं का दर्शन किया। और जब भगवान ने समझ गए कि ये तो अपने नारद मुनि है, गोपी के रूप में आए हुए हैं, तो भगवान बोले ठीक है आपका आपका स्वागत है, अब आप क्या करो, यही साथ में बैठ के तपस्या करो और पूरे जन साधारण के उस उद्धार के लिए भक्ति शास्त्रों की रचना करो। तो वहीं पे नारद वन जो कुसुम सरोवर के पास है, वहीं नारद मुनि तपस्या करते हैं, और उन्होंने नारद भक्ति सूत्र की रचना भी वहीं पे की। और जो दक्ष का जो श्राप था कि आप एक स्थान पे रुक नहीं पाओगे, तो भगवान ने बोला घबराओ मत, वो श्राप यहां काम नहीं करेगा वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन भौतिक जगत में नहीं है। तो देखते हैं कि नारद मुनि अगर अपने आप प्रयास कर रहे हैं भगवान को समझने का, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने का, तो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने शिव जी की शरण ली और शिव जी की कृपा से उनको वृंदा देवी की कृपा मिली, और फिर गोपियों के अनुगत होकर वो भगवान की लीलाओं का दर्शन कर पाए। स्वयं लक्ष्मी जी प्रवेश करना चाहती है रासलीला में, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अपना मान बनाकर बैठी हुई है। तो ये बात बहुत समझना आवश्यक है कि जब तक हम वरिष्ठ वैष्णवों और गुरुओं को पसंद नहीं करेंगे, धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायम, जो धर्म का तत्व है और धर्म के तत्व की परिकाष्ठा है गुहेतम रहस्य, भगवान के विषय में जानना, ये बहुत गुहे बात है, और ये कैसे उनके हृदय में छिपी हुई है। और जब तक हम महान आचार्यों के हृदय को नहीं छुएंगे अपनी साधना से, अपने प्रयासों से, ये ज्ञान हमें प्रकट नहीं होगा। हमें इतनी उत्कंठा दिखानी है कि हम पूर्ववर्ती आचार्य और वर्तमान आचार्य को हृदय को पिघला दें कि इतना प्रयास तो ठीक है, इसके ऊपर हम कृपा करते हैं। केवल साधारण प्रयासों से हम भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, खूब उत्कंठा होनी पड़ेगी। और बिल्कुल कोई इंडिपेंडेंट नहीं। एक बार क्या हुआ, हमें जब ऐसा सोचते खूब प्रयास करना है, खूब प्रयास करना है, तो प्रभुपाद जब मायापुर में थे तो एक अफ्रीका से भक्त आया, तो उसने जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में सुना तो उत्कंठा हो गई कि मैं भी खूब जप करूंगा। उसने वो प्रतिदिन 120 माला करता था और बिल्कुल एक अलग झोपड़ी बना ली, भक्तों के साथ नहीं रहता था कि भक्तों से बातचीत करूंगा, प्रजल्पा होगा, टाइम वेस्ट होगा। 120 माला करता था, 2 घंटे सोता था और थोड़ा सा प्रसाद लेता था। तो सारे विदेशी भक्त बड़े इंप्रेस हो गए, तो बहुत तरक्की कर रहा है लगातार, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, 120 माला। तो प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक में गए तो सब बताते थे, अब उसने ये तपस्या शुरू कर दी, अब ये कर दिया। प्रभुपाद बिल्कुल उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। बोला प्रभुपाद, बोला क्या अब वो नदी में रहना चाहता है? नहीं नहीं प्रभुपाद, अब वो सोच रहे वृक्ष पे ऊपर रहूंगा। प्रभु बोलते हैं नॉनसेंस। प्रभुपाद ने हाथ हिलाते बोला नॉनसेंस है ना, जब तक वो ये कह रहा है कि आई वॉन्ट इट्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, मैं 120 माला करना चाहता हूं, मैं पेड़ पे रहूंगा, मैं झोंपड़ी में रहूंगा, प्रभुपाद कहते हैं ऑल नॉनसेंस, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और देखा कुछ ही दिनों के बाद उस वक्त का पता नहीं वो कहां गया। तो ये उत्कंठा का मतलब नहीं है कि अपना उत्साह दिखाएं, मैं चाहता हूं, मैंने सोचा है कि कल से मैं 64 माला करूंगा, मैं चाहता हूं, नहीं। ये पृथगीश माने ना, क्या होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से गुरु के आदेशों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। इसमें बहुत शक्ति है। हम लोग प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ रहे हैं, तो प्रामाणिक गुरु परंपरा से संबंध जोड़ने से कृष्ण से संबंध जुड़ेगा, और संबंध जुड़ता है सेवा से, उनकी आज्ञाओं का पालन करने से, तब ये जो गुह्यतम ज्ञान है तब प्रकट होगा, अन्यथा नहीं। हम घूमते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आज बहुत विशेष दिन है, जयदेव गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है, तो जयदेव गोस्वामी जी के सामने भगवान ने अपनी गुह्यतम से गुह्यतम लीला प्रकट की। वेदेशो दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, उनके सामने गुह्यतम लीला प्रकट की। क्यों? जयदेव गोस्वामी बहुत एक शरणागत भक्त थे। जयदेव गोस्वामी जी का जो बताया जाता है जन्म, पश्चिम बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है केंदुली बोला जाता है, और उस गांव का वैसे नाम है केंदु बिल्प। इनके पिताजी का नाम था भोजदेव और माता का नाम था बामा देवी। इनका जयदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु से लगभग 300 साल पहले होगा, और 12वीं शताब्दी में, जब उस समय बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में उनकी सल्तनत थी, तो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चांद कवि, उन्होंने चौहान वंश के विषय में लिखा था, तो उन्होंने जयदेव गोस्वामी का वर्णन किया था, और गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी जी की रचना उसका वर्णन उसमें आता है। तो इससे मालूम चलता है कि 12वीं शताब्दी में लगभग 1110 के आसपास जयदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ था, चैतन्य महाप्रभु से बहुत समय पहले। और जयदेव गोस्वामी के विषय में बताया जाता है कि उनकी जो सबसे बड़ी रचना गीत गोविंद, ये भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। और इनका सामने जो भगवान इनके साथ क्या क्या लीलाएं की, बताया जाता इनका विवाह भी जगन्नाथ जी ने कराया। तो ये तो पूरे ब्रह्मचारी जी उनका पालन कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण थे जो कि जगन्नाथ जी के भक्त थे, तो उन्होंने बहुत जगन्नाथ जी की तपस्या की, भक्ति की, उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर बहुत वर्षों के बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। जब पुत्री बड़ी हो गई तो ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे, उन्होंने उस पुत्री को लेकर जगन्नाथ जी के चरणों में डाल दिया कि अब आप इसकी देखभाल करो। तो जगन्नाथ जी बोला इसको यहां मत छोड़ो, मेरा एक और भक्त है जयदेव, वो उसके साथ इसका विवाह कर दो। तो ढूंढते ढूंढते गए, जयदेव को स्वामी जी तपस्या कर रहे थे, साथ में उन्हें बेटी को छोड़ दिया, इसको संभालो मैं चला। तो बेटी को छोड़कर वो चले गए। जयदेव को स्वामी कहां से आ गए भी तुम, कहां से? तो बोले मेरा कोई विचार नहीं है विवाह करने का, तुमने जहां जाना है मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उस लड़की ने जोर से रोना शुरू कर दिया, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आई हूं, भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा थी कि मैं आपसे विवाह करूं, और अब मेरा संसार में कोई है नहीं, पिताजी छोड़कर चले गए, भगवान ने बोला आपके पास छोड़ के आप कहां जाओ। तो जयदेव गोस्वामी जी को फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ा। तो किसी युवा के साथ अगर ऐसा हो तो फिर कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ना? आकाश मैच मेकर जगन्नाथ जी स्वयं है तो और क्या चाहिए होता है। और जब तो जगन्नाथ जी की इच्छा से उन्होंने उसका विवाह हो गया, और उसके बाद पद्मावती उनके पत्नी का नाम था, और दोनों बहुत अच्छे भक्त थे। उनके घर में राधा माधव के विग्रह थे। तो एक बार वो अपने घर में जो राधा माधव के विग्रह थे, एक घर में कोई मंदिर था तो छत टूट गई थी, तो छत ठीक कर रहे थे, वो ऊपर चढ़े हुए थे तो नीचे से सामान, तो बोले हाँ सामान दो, तो सामान मिलता था ठीक कर रहे थे, सामान मिलता ठीक करते थे। वो सोचे हैं कि शायद नीचे पद्मावती खड़ी है, जब नीचे आके देखते तो कोई भी नहीं था, स्वयं माधव जी उनके लिए उनकी सहायता कर रहे थे मंदिर बनाने के लिए, स्वयं भगवान। देखिए कैसे कैसे भक्त होंगे, भक्त सोचिए कैसे भक्त होंगे जयदेव गोस्वामी जी। तो उन्होंने 10 अवतार शोत्र की भी रचना की, जो अभी हम क्लास के अंदर कुछ पढ़ेंगे। तो उस समय वो रहते थे बलाड़ डिग्गी में, अब मायापुर गए हैं, बलाड़ डिग्गी मालूम है कहां पे, पृथु कुंड आता है उसी स्थान के पास थे। तो वहां बना बंगाल के रहे थे राजा लक्ष्मण सेन। तो राजा लक्ष्मण सेन के मंत्री थे गोवर्धन आचार्य। तो एक बार वो 10 अवतार स्त्रोत का ऐसे उच्चारण करे थे, तो राजा लक्ष्मण सेन बहुत प्रभावित हुए, बोले काव्य किसने लिखा है, बोले जयदेव जी ने। तो राजा लक्ष्मण सेन ने सोचा कि मैं इनसे मिलकर आता हूं, लेकिन वो जानते थे कि जयदेव गोस्वामी बहुत विनम्र भक्त हैं, वो मुझ जैसे भौतिकवादी व्यक्ति से मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही साधारण वैष्णव की वेशभूषा धारण कर ली। तो देखते हैं कि ये उत्कंठा होनी चाहिए भक्तों से मिलने के लिए। उन्होंने बोला कि अगर भक्ति पाने के लिए मुझे भिखारी भी बनना, भिखारी बनने को तैयार हूं। तो भिखारी बनकर गए। इसी ढंग से देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में राजा प्रताप रुद्र थे। राजा प्रताप की बहुत इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते थे। महाप्रभु कहते थे मैं किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति से मिलूंगा नहीं। लेकिन राजा पुत्र कहते थे कि भाड़ में गया ऐसा राज्य जो मेरे को चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं दे रहा, तो वो तो आत्महत्या करने को भी तैयार थे। इसी ढंग से राजा लक्ष्मण सेन की इतनी तीव्र इच्छा थी कि मैं इस महान भक्त के दर्शन करूं, और उनका मालूम था मैं राजा के वेश में गया तो उनसे मिलेंगे नहीं, तो एक भिखारी बनकर गए। भिखारी बनकर राजा लक्ष्मण सेन पहुंचे जयदेव जी सिंह कुटिया में, तो एक कोने में जाके बैठ गए। लेकिन जयदेव गोस्वामी सब कुछ जानते थे, उन्होंने पहचान लिया कि तुम एक राजा हो और एक भिखारी बन के आए हो। तो क्या बोला लक्ष्मण सेन ने, कोई बहाना नहीं लगाया, तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा जिनसे मैं भक्ति लेने आया हूं उनके सामने मैं झूठ बोलूंगा क्या फायदा है ना। तो कभी भी हमें भक्तों के सामने, गुरु के सामने कुछ भी, हालांकि उनके लिए बहुत ही शर्मदायक सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, लेकिन तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं राजा लक्ष्मण सेन हूं। तो फिर जयदेव गोस्वामी उनको बोला कि ठीक है, अगर तुम मेरे तरह से इससे मुझे तंग करोगे मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर कहीं चला जाऊंगा, मैं गंगा पार निराचल में चला जाऊंगा। तो राजा लक्ष्मण सेन उनके पांव पड़े, बोले ऐसा मत कीजिए, आप यहीं पे रहिए, मैं कभी भी आपको विचलित नहीं करूंगा, आप गंगा के पश्चिमी घाट चंपाहट नाग बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर मैं आपके लिए कुटिया बना देता हूं। मेरी इच्छा तो ये थी कि आप मेरे राज्य में आइए, कभी बनिए। तो जयदेव गोस्वामी बोला नहीं, मैं भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करता। तो लक्ष्मण सेन ने बहुत विनम्रता से इसको स्वीकार किया। तो फिर जयदेव गोस्वामी बोला कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ले रहा था, परीक्षा ले रहा था, क्षमा कीजिए, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, मैंने आपको भौतिकवादी व्यक्ति बोला, वास्तव में तुम महान भक्त हो और तुम्हारे अंधेरे में बहुत भक्ति है, तुमने बहुत ही विनम्रता से इसको सहन किया, तो निश्चित रूप से मैं यहीं पर रहूंगा और तुम कभी कभी बीच में आओगे और चुपके से मेरे दर्शन कर सकते हो। तो इस ढंग से लक्ष्मण सेन और जयदेव गोस्वामी का ऐसा संपर्क हुआ, और वही स्थान है चंपा हाटी जहां पर हम जाते हैं, वहां पर जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद ऐसा ग्रंथ है जो परम हंसों के लिए है, और इस ग्रंथ में जो श्रीमती राधा रानी का विरह होता है रासलीला से पहले, उन भावनाओं का वर्णन किया गया है। बहुत ही उच्च कोटि का यह ग्रंथ है। हम जानते हैं कि सारे वेदांत सूत्र की जो नेचुरल कॉमेंट्री है वो श्रीमद् भागवतम है, और श्रीमद् भागवतम का जो मुख्य सार है वो दशम स्कंद, और दशम स्कंद के जो 5 रसलीला के ग्रंथ अध्याय हैं रासलीला के, वो सर्वोत्तम है। और रासलीला में भी श्रीमती राधा रानी का मान ये और सर्वोत्तम है। तो श्रीमती राधा रानी के मान का वर्णन गीत गोविंद में आता है, कितना उत्कृष्ट उत्कृष्ट ये ग्रंथ है, केवल परम हंसों के लिए। जयदेव गोस्वामी जी खुद इस ग्रंथ के बारे में बताते हैं। गीत गोविंद का वर्णन करते हुए कविवर जयदेव गोस्वामी कहते हैं, संगीत की विविधताओं में जो भी आनंद प्रंद है, काव्य के सूक्ष्म भावों में भी जो भी सुललित है, और प्रेम की मधुर कुला में जो भी उत्तमोत्तम है, उन सबको प्रसन्नचित एवं विद्वान जन जयदेव के गीतों से परिशोधन करें। तो जयदेव गोस्वामी खुद इसके बारे में बता रहे हैं, तो वो कह सकते हैं बड़ा अभिमान है इनको, अपनी रचना के विषय में इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। बताया जाता है कि जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है कि प्रतिदिन शाम को आज भी जगन्नाथ मंदिर में गीत गोविंद गाया जाता है। क्यों गाया जाता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक फूल चुनने वाली मालिनी, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन देखे आपने जगन्नाथपुरी में, वहां पर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए फूल चुन रही थी, और फूल चुनने के साथ साथ क्या कर रही थी, गीत गोविंद गा रही थी। तो इस गीत गोविंद से भगवान जगन्नाथ इतने आकर्षित हो गए कि भगवान अपना आल्टर छोड़कर उसके पीछे पीछे भागे, और वो जो स्त्री थी जो फूल चुन रही थी उसके आसपास फूल चुन चुनते सब कांटे थे, तो भगवान भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं उसके पीछे गीत सुनने के लिए, और फिर अचानक शंख बजा और जब दर्शन खुलने के समय हुए तो भगवान जगन्नाथ जी वापिस आए आल्टर में। जब वापिस आए तो क्या देखे, उनकी सारी जो वेशभूषा थी उसमें सब कांटे लगे हुए थे और फटी हुई थी जिस स्थान स्थान पर, सारे पुजारी हैरान कि कैसे हो गया, कौन अंदर आया, कहां पे हो गया। फिर जगन्नाथ जी वहां के राजा के सपने में आए और उन्होंने बताया कि एक वो एक लड़की थी मालिनी जो कि फूल चुन रही थी और गीत गोविंद गा रही थी, जो मुझे बहुत प्रिय है। तो फिर ये नियम बना कि प्रतिदिन शाम को जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद गाया जाएगा, वो जगन्नाथ की। तो वो वहां भी बताते हैं कुछ ऐसे दर्शन होते हैं बड़ देश बड़ वेश दर्शन होते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ जी को खूब आभूषण वगैरह डाले जाते हैं, और शाम को वृंदावन वेश में भगवान के दर्शन होते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी में गए होंगे तो जगन्नाथ जी के दर्शन रात के 1 बजे भी हो जाते हैं, है ना, वास्तव में कलयुग के भगवान है ना उनका कलयुग के जीव 1 बजे 2 बजे तक जागते रहते हैं, कहीं और नहीं दर्शन मिलेंगे। भगवान जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, बोले जो नशेड़ी लोग हैं या जो भी हैं, जो तमोगुणी लोग हैं, तमोगुणी से तमोगुणी लोग, जब आना चाहे आ जाओ, 1 बजे 2 बजे तक भगवान खुले रहते हैं, आओ दर्शन कर लो, इतनी कृपा देखी। तो 1 बजे 2 बजे उनके भगवान के दर्शन होते हैं, तब पुजारी लोगों को वृंदावन वेश डालते हैं कि भगवान अब रासलीला में प्रवेश करने वाले हैं, पूरी फूल मालाओं से उनको सुशोभित कर देते हैं। उस समय भगवान जगन्नाथ जी को जो पगड़ी डाली जाती है, वो पगड़ी पे पूरे गीत गोविंद के श्लोक लिखे होते हैं। कितना प्रिय है देखिए गीत गोविंद भगवान, और कितने प्रिय होंगे जयदेव गोस्वामी जिनकी रचना से भगवान इतना प्रेम करते हैं, कितने प्रिय होंगे। एक बार एक कसाई था, कसाई जो कि शालिग्राम शिला से मांस बेचता था ऐसे, और साथ साथ में क्या करता था, गीत गोविंद गाता था। तो एक ब्राह्मण ने देखा, बोले यार क्या कर रहे हो, मांस बेचते हो और शालिग्राम शिला को एक बट्टे की तरह वेट करने के लिए नोटिस कर रहे हो, रह दो यहां पे, शालिग्राम शिला कैसे करते हैं। और लेकर गए और अपने वहां जाकर मंत्रों के उच्चारण से पूजा करने लगे, तो भगवान जगन्नाथ उनके सपने बोले वापिस ले जाओ, मुझे बोल हो रहे हैं बिल्कुल कुछ आनंद नहीं आ रहा तुम्हारे पास। मुझे वो जो कसाई था वो क्या करता था, प्रतिदिन गीत गोविंद सुनाता था। तो कितना प्रिय है ये भगवान को, और भगवान को कितने प्रिय होंगे ये भक्त जयदेव गोस्वामी जी। तो जब गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तो एक बार क्या हुआ, एक जो घटना, एक कथा आपने सुनी होगी, लेकिन बार बार सुनने से बहुत आनंद आता है, कि उन्होंने क्या देखा कि राधा रानी जी भगवान से मान कर रही हैं, बहुत प्रतीक्षा की, भगवान समय पे नहीं आए, तो श्रीमती राधा रानी को बहुत क्रोध आ गया और भगवान से वो मिलने रही हैं। तो भगवान बहुत विनम्र हो गए, भगवान को बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैंने राधा रानी को दुखी कर दिया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने सर पे लगा रहे हैं क्षमा मांगते हुए, स्मरण गरल खंडनम मम शीर सी वंदनम देही पद पल्लव उदारम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पूरे हृदय में जो ये काम वासना है, इसका पूरा सागर इस जहर की तरह उमड़ रहा है, केवल तुम ही इसको शांत कर सकते हो, तुम्हारे चरणों की धूल से शांत होगा, देही पद पल्लव उदारम, देही आप अपने चरणों को मेरे सर पे रखो। स्मरणकरण खंडम हम शीरसी वंदनम। तो ये जब वो लिखने लगे देही पद पल्लव उदारम कि भगवान अब राधा रानी के चरणों को अपने सर पर रख रहे हैं, तो उनसे लिखा नहीं गया। और ये कैसे संभव है, मैं क्या कर रहा हूं? जब जयदेव गोस्वामी जी कोई दर्शन हो रहा था तो कोई मानसिक कल्पना नहीं थी, मतलब बड़ा अच्छा आइडिया, हम ऐसे सोच के कुछ लिखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, सोच के कुछ भी लिख लिया, ऐसा नहीं। अभी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं था कि कुछ कल्पना करके लिख रहे हैं, भगवान की लीलाओं के दर्शन को ऐसे हो रहे हैं साक्षात देख रहे हो, ऐसे दर्शन होते हैं शुद्ध भक्तों को, हम लोग नकल नहीं मार सकते। तो उनको पूरे दर्शन हो रहे थे और फिर देखा कि भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, तो उनको बड़ा संकोच हुआ ये लिखने में। देही पद पल्लव उदारम, नहीं नहीं ये संभव नहीं है। तो बहुत ही विस्मित हो गए, क्या करो, उन्होंने ये कैसे लिखूंगा, ये कौन क्या कहेगा कि भगवान राधा रानी के चरणों को अपने सर पर रख रहे। क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु कृपा से और आचार्य कृपा से अब राधा रानी की महिमा को जान पाए हैं। जो बाकी वैष्णव संप्रदाय है वो श्रीमती राधा रानी के स्तर को नहीं जानते, और कोई राधा रानी की पूजा करता भी नहीं है। जो मध्वाचार्य हैं, जो मध्वाज हैं, उनका तो यह समझना है कि श्रीमती राधा रानी शायद कोई अप्सरा थे और कृष्ण की लीला में ऐसी एक अप्सरा आ गई और भगवान ने सब कुछ किया, बस खत्म। कोई सर्वशक्तिमय नहीं है। वो ये नहीं जानते कि जिस लक्ष्मी नारायण की वो पूजा करते हैं स्वयं लक्ष्मी जी राधा रानी की विस्तार है। द्वारका की जितनी पटरानियां हैं वो राधा रानी की विस्तार है, वो ये नहीं जानते। तो राधा रानी के पूजा में कोई भी दूसरी वैष्णव संप्रदाय इस ढंग से अग्रसर नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे छठ गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु, और पुराणों में राधा रानी की महिमा को बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही उन्होंने इस राधा रानी की उत्कृष्ट स्थिति को स्थापित कर दिया था जयदेव गोस्वामी जी ने, इससे पहले और किसी ने नहीं किया था। तो जयदेव गोस्वामी पहले ऐसे कवि थे, ऐसे वैष्णव थे कि जिन्होंने राधा रानी की उत्कृष्ट स्थिति को चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले स्थापित किया। तो वो बड़े घबरा रहे थे, इस समय कैसे मैं लिख सकता हूं कि भगवान ने राधा रानी के चरणों को अपने सर पर रख लिया। तो कह रहे ठीक है मैं गंगा में स्नान करके आता हूं। अपनी पत्नी पद्मावती को बोला कि आप प्रसाद तैयार करो, मैं अभी आ रहा हूं। तो चले गए, और उसके बाद क्या होता है, भगवान स्वयं आ जाते हैं और पद्मावती के पास आते हैं। भगवान स्वयं कैसे बनकर आते हैं, हूबहू जयदेव, है ना। उनकी पत्नी भी उनको नहीं पहचान पाई, पत्नी भी नहीं पहचान पाई, यानी कि थोड़ा सा अलग लग रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। देखिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जयदेव बन के आगे बोले फटाफट प्रसाद बनाओ, बहुत भूख लग रही है, और कमरे में गए और कलम से लिख दिया। क्या लिख दिया, देही पद पल्लव उधार। और किस हैंड राइटिंग में लिखा, हू बहु जयदेव गोस्वामी की हैंड राइटिंग, यानी कि भगवान की हैंड राइटिंग कुछ अलग थी, हू बहु वैसी हैंड राइटिंग में लिख दिया। और आकर पद्मावती के हाथ से खूब आनंद से प्रसाद पाया, उन्हें खूब प्रशंसा की और फिर चले गए। और कुछ समय के बाद जो जयदेव थे वो आए, और उस समय उनके बाल गीले थे और बड़े गंभीर मुद्रा में थे। तो बोला जब वापिस आए तो देखा पद्मावती प्रसाद खा रही है, तो बड़े हैरान हो गए, अरे पद्मावती आज क्या हो गया तुम्हें। इस समय ऐसा होता था कि पत्नी बिना पति को खिलाए नहीं खा सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी पत्नी, आजकल की बात तो नहीं कह सकते मुझे, लेकिन सोच भी नहीं सकती थी पत्नी। तो जयदेव गोस्वामी के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, आजकल तो खाना बनाओ यही बहुत बात है, चलो तो वो खुद खा रही है। मतलब जयदेव गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे क्या हो क्या गया, तू सारे एटिकेट्स कहां गए, मेरे से पहले कैसे खा रहे हो। तो पद्मावती बोली अरे आपके तो प्रसाद खा रहे हो। अरे मेरा प्रसाद मैंने खाया है, मेरा महाप्रसाद कैसे। बोले आप आए थे, आपने खाया है, आपने जाके अंदर लिखा। बोले लिखा मैंने, क्या लिखा है, क्योंकि देखो जब जयदेव गोस्वामी अंदर गए तो देखा देही पद पल्लव उदारम, और उन्हीं की हैंडराइटिंग में। ओह फिर वो समझ गए, जोर से चिल्लाए पद्मावती स्वयं भगवान आए थे, स्वयं, और रोने लगे। आप सोचिए कितना रोमांच हुआ होगा उनको कि अरे भगवान ने आकर स्वयं लिख दिया, जो मैं सोच रहा था वही बात भगवान ने स्वयं लिख दी, अनुमोदित कर दिया कि जो मुझे दिखाई दे रहा था बिल्कुल ठीक था, कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों को अपने सर पे रखा था, स्वयं भगवान आए कि बिल्कुल ठीक भाव है, ऐसा ही हुआ है। देखिए तो इतना वो रोए और बोले पुनमवती कि भगवान ने तुम्हारे हाथ से प्रसाद स्वीकार किया, तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। तो वो दोनों के दोनों मूर्छित हो, मूर्छित होते हैं तो फिर क्या सामने देखते, जब उनकी चेतना में वापस आते हैं तो उनके सामने कौन खड़े हैं? भगवान गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु ने इस पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले जयदेव गोस्वामी को दर्शन दे दिए। हम लोग तो गौरांग महाप्रभु में सुन चुके हैं, पहली बारी जब जयदेव गोस्वामी जी ने दर्शन किए होंगे पद्मावती ने कैसा लगा होगा। भगवान गौराम वो अजाम उनके पूरी भुजाएं घुटनों से नीचे, कमल लोचन, बड़े बड़े आंखें जो कि कानों तक जा रहे हैं, सुंदर घुंघराले बाल, एक लंबी फूलों की माला, और उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है जैसे कि करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज हो, और उनकी छोटी सी जो कुटिया थी बिल्कुल दिव्यमान प्रकाशमान हो गई, और गौरांग महाप्रभु मुस्कुराते हुए नृत्य करते हुए उनके सामने प्रकट हुए और बोल रहे हैं कि मैं इस रूप में कल कुछ ही वर्षों के बाद प्रकट होऊंगा। तुम भगवान गौरांग महाप्रभु ने बोला कि मेरी हृदय की इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपने दर्शन दू। तो भगवान मौका ढूंढते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। इसी ढंग से जब माधवेंद्रपुरी परिक्रमा कर रहे थे तो गोपाल उनके सपने में आए थे और गोपाल ने बोला था कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूं। भगवान भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें दर्शन दू, तो मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, और तुम क्या करो, तुमने जो एक गीत गोविंद लिखा है ये मुझे बहुत प्रिय है, और मैं नीलाचल में, भगवान ने पूरा बताया कि मैं 24 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, फिर मैं नीलाचल में जाकर सन्यासी वेश में रहूंगा और अपने अंतरंग पार्षदों के साथ मैं तुम्हारे इस गीत गोविंद को श्रवण करूंगा। हम देखते हैं गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ जयदेव गोस्वामी जी के इस गीत गोविंद को सुनते थे और बहुत आनंद प्राप्त करते थे। तो बोले आप जाइए नीलाचल में और जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए वहां पे जाइए, जगन्नाथ जी को भी आपके गीत गोविंद बहुत पसंद होगा, उसके बाद वहीं शरीर त्यागने के बाद तुम वापस मेरे पास नवद्वीप में आ जाओगे, अब तुम नीलाचल जाओ। तो जब ये उन्होंने सुना जयदेव गोस्वामी और पद्मावती ने तो रोने लगे, उन्होंने भगवान आप हमें नवद्वीप धाम से बाहर जाने को कह रहे हैं, निश्चित रूप से हमको अपराध हुआ होगा। तो जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनकी यही भावना होती है कि हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, और जिन जो नए भक्त होते हैं हम लोग अपराध करते भी रहते हैं हमें पता भी नहीं चलता, हम सोचते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, उच्च कोटि के भक्त हमेशा साधन रहते हैं कहीं अपराध तो नहीं हो गया। तो उनको बोला निश्चित रूप से मुझे कुछ अपराध हुआ होगा, तभी भगवान हमें नवद्वीप धाम से बाहर भेज रहे हैं। तभी एक और आकाशवाणी होती है, बोले आप घबराओ मत, आपको वहां जाने से दो लाभ होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले आपने इच्छा प्रकट की थी कि आपको नीलाचल जाना है, और दूसरा स्वयं भगवान जगन्नाथ आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान भक्तों के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। भक्ति स्नाथ थोड़ी मठ सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं, जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं तो हम अपने इन चमड़े की आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, वास्तव में जब यहां पर हम आते हैं तो हम अटेंडेंस लगाने आते हैं, ललकानंद जी मैं यहां पे हूं, कोई दूर भी खड़ा है मैं यहां पे हूं, मेरे को नोट कर लीजिए मैं आया हूं आपके पास, हम क्या दर्शन करेंगे, भगवान हमारे दर्शन करते हैं, भगवान सच्चिदानंद है और हम तो इस चमड़े के शरीर में हैं, हम क्या दिव्य भगवान के मेरे दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में आकर हमें अपनी हाजिरी लगानी चाहिए कि भगवान हमें देखे और हम पर कृपा करें, कि जो अर्च विग्रह होते हैं उनकी प्रकृति होती है कि वो सबको आशीर्वाद देते हैं, तो हमें केवल इस दृष्टि से आना चाहिए। दृष्टा वो है, दृष्टा हम नहीं है, देखने वाली वस्तु वो नहीं हम है। तो इसलिए बोले जगन्नाथ जी आपके दर्शन करेंगे, जगन्नाथ जी आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और जगन्नाथ जी आपको गीत गोविंद सुनेंगे, तो इसलिए फिर जयदेव गोस्वामी जगन्नाथपुरी में गए थे। तो ये थे जयदेव गोस्वामी के विषय में। अभी बताया जाता है कि उनका जो गांव है, जो केंदुली गांव है, माघ पूर्णिमा से जो माघ मास चल रहा है और आज के तिरुभाव दिवस तक पूरे एक सप्ताह का वहां पे एक फेस्टिवल होता है, जहां पे हजारों लाखों लोग अभी भी आते हैं और जयदेव गोस्वामी जी का गुणगान करते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि आज इस लीला में जयदेव गोस्वामी जी ने जो गीत गोविंद लिखी, इसमें भगवान श्रीमती राधा रानी के उत्कृष्ट प्रेम और सेवा की भावना से आकर्षित होकर भगवान श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। यह है राधा दास्यम, ये उच्चतम भक्ति है कि भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, भगवान नंद महाराज के जूतों को सर पे लाते हैं, भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं, भगवान सुदामा के चरणों को धोकर उसका चरणामृत पीते हैं। तो ये भक्ति है, ये बहुत गोहितम ज्ञान है। मायावादी लोग स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त है वो भगवान से भी ऊपर हो जाते हैं और भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। ये जो गोहितम बात है केवल भक्त ही समझ सकते हैं। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, शिव जी बोलते हैं मैं नहीं जान सकता, ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, नारद मुनि नहीं जान सकते, देव ऋषि कोई नहीं जान सकते, ये तो केवल जो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही जान सकते हैं। एक बार इस ओरिजिनल राधानंद स्वामी महाराज किसी जयदेव गोस्वामी जी के ऊपर प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में, तो एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि अमेरिकन था। उसने बोला कि मैंने वाराणसी से जयदेव गोस्वामी जी के गीत गोविंद के ऊपर पीएचडी कर रखी है, और बोला कि आप लोगों के कृष्ण को क्यों पूछते हो, इससे ज्यादा अनैतिक व्यक्ति मैंने देखा नहीं कोई। राधा रानी के साथ वो क्यों घूमते थे, विवाह तो किया नहीं, और ऐसे लोगों को आप भगवान मानते हो, किसी और के भगवान की पूजा नहीं कर सकते, राम को पूजो, जीसस को पूजो, अल्लाह को पूजो, क्या कृष्ण को ले लिया, ऐसा लंपट व्यक्ति जिसका कोई चरित्र नहीं है उसको आप भगवान मानते हो, और मैं तो कृष्ण के ऊपर पूरा गीत गोविंद मैंने पीएचडी कर रखी है। तो ये करते करते साथ में सिगरेट पी रहा था। तो महाराज ने उनको बोला अच्छी बात है आपने पीएचडी कर रखी है, क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? तो बोले नहीं भगवत गीता नहीं पढ़ी। तो महाराज बोला पहले ये श्लोक पढ़ो, देहिनोस्मि यथा देहे को मारम योगनम जनम तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्म बोले। बोले कब तक पूर्ण करे, पूरा जीवन पढ़ो, पहले पूरा जीवन इस श्लोक को पढ़ो फिर समझ में आएगा। तो उसकी पत्नी सामने खड़ी थी, वो बाहर बोलती चलो चलो, अभी तो मैं बात नहीं करूंगा, मेरी पत्नी मुझे बुला रही है। तो महाराज ने बोला सर धर्मान परित्याज महामेकम शरणम। गीत गोविंद की बात करते हो पहले ये सब चक्कर छोड़ो, फिर तुम्हें गीत गोविंद समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो अगर हमने ये गोहितम रहस्य को जानना है तो वास्तव में हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान और भक्तों की सेवा करना। जब ये प्योरिटी ऑफ पर्पस होगा कि केवल यही उद्देश्य है और कुछ नहीं, तब हम जाके भगवान को समझ पाएंगे। हमारे साथ साथ और भी इच्छाएं हैं, हां धनम हां जन्म हां सुंदरी, मुझे धन भी मिल जाए, जन्म भी मिल जाए, सुंदरी भी मिल जाए और भक्ति भी मिल जाए, ये संभव नहीं है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल आपके हितों की भक्ति चाहिए। हम चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, कोई बीच का फॉर्मूला निकाल देना, कोई हां धनम हां जन्म हम सुंदरी के साथ भक्ति मिल जाए, ये संभव नहीं है। सब कुछ हृदय से इनके लिए आसक्ति त्यागनी पड़ेगी, तब जाके भगवान की गोहितम लीला में हम प्रवेश कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और ये नकल मानने से नहीं, कुछ लोग बात सुने गीत गोविंद है और जैसे दर्शन हो गए तो हमें भी जाना चाहिए राधा दास्यम, राधा रानी के चरणों को पकड़ लें और बस उनको सर पे लगा लें, आहा क्या आनंद आ जाएगा। तो बस इस सहिज्या भाव है। कल ही श्रीला प्रभु बता रहे थे भगवान के चरणों को अपने जीवन का धन बनाना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से, सेवा में जुड़ना पड़ेगा। और कलयुग में केवल संकीर्तन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा को। हम देखते हैं जिस जंग से शिला प्रभुपाद अमेरिका में आने वाले थे, यात्रा शुरू करने वाले थे, तो प्रभुपाद कितने उत्साहित थे अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए। वृद्ध अवस्था में तो राधा दामोदर मंदिर में उनको किनके दर्शन प्राप्त हुए, शिला रूप गोस्वामी जी के। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया तुम जाओ विदेशों में प्रचार करो, निश्चित रूप से मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। इसी ढंग से 1915 में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज मायापुर में भजन कर रहे थे। उस समय भक्तिनाथ ठाकुर जी का भी तिरुभाव हो गया था, गोरकिशोरदास बाबा जी का भी तिरुभाव हो गया था, और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे कि कैसे मैं प्रचार करूंगा, बहुत चिंतित थे। और तब उनके एक शिष्य थे कुंज बिहारी, उन्होंने बोला कि आप कलकत्ता में जाकर प्रचार करो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने आप को बिल्कुल अयोग्य और पा रहे थे, कह रहे कोई शक्ति नहीं है मुझ में। तब उनको दर्शन हुए, उन्होंने देखा कि पूर्वी दिशा से पंच तत्व आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित और साथ में और सब पार्षदगण, और साथ में है जगन्नाथ बाबा जी, भक्तिनाथ ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी और सारे पूर्ववर्ती आचार्य, सबके सब आ रहे हैं और सबके सब उनको आश्वासन दे रहे हैं चिंता मत करो, जाओ और खूब प्रचार करो, हम तुम्हें पूरा सहयोग देंगे, सारे धन सब लक्ष्मी सब लोग सब तुम्हें सब कॉपरेट करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो अगर हम गुरु परंपरा के निर्देशों को अच्छे ढंग से समझते हैं और उसमें अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तब हमारे में ये योग्यता आती है कि हम भगवान के दर्शन भी कर पाएंगे और भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। और अगर हम सोचे नहीं जी हम तो कोई शॉर्टकट मार के भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो नहीं। तो असली जो राधा दास्यम है वो गुरु दास्यम है कि भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि की हम शरण ग्रहण करें, उनके आदेशों को समझें। अपने जीवन में गुरु के छोटे छोटे आदेशों को उतारने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, तो उसी को हम बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल पे आकर हमें पहले अपने जीवन में आदेशों को उतारना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ ये लॉलियम लाना चाहिए कि हाँ हमने भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और भगवान से कृपा की याचना करते रहे, तो निश्चित रूप से हम भी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के संकीर्तन आंदोलन में बहुत शक्ति है और दिखाया भी है प्रभुपाद जी के जिन शिष्यों ने प्रभुपाद को अपना जीवन समर्पित किया है उनको भी ऐसे दर्शन हुए हैं। समय को बहुत यानी कहने को बहुत कुछ है, जैसे हिजोरी ने भक्ति थी स्वामी महाराज शरीर छोड़ने से पहले उन्हें सबको बता के गए कि मैं जानता हूं मैं कहां जा रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं मेरी क्या सेवा है, स्पष्ट सब कुछ बता के गए। क्यों? वो पूर्ण रूप से प्रभुपाद के संकीर्तन आंदोलन में समर्पित थे। तो हम लोग जब इन बातों को सुनते हैं तो कोई हमारे अंदर सहजीय भाव नहीं आना चाहिए कि ठीक है ये बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं, मीठी मीठी बातें हैं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तुरंत हम प्रवेश कर जाएं। ये राधा कृष्ण की लीलाओं को ऐसे दर्शन करना कोई नई पिक्चर देखने का समान नहीं है ना, कोई सिनेमा देख लिया दर्शन हो गए, ऐसे नहीं। ये तो भगवान हृदय में प्रकट करेंगे और हृदय में तभी प्रकट करेंगे जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से आदेशों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। हरे कृष्ण।